नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सत्यवचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस अध्ययन माला में इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस द्वारा लिखी गई कुलुसियों नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन माला से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार की बीमार अवस्था में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें भी छुटकारा दें ताकि प्रत्येक जीवन आपको धन्य कहने पाए। इस समय फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और अध्याय दो में हम देखेंगे कि प्रथम 15 पद में प्रभु यीशु दार्शनिक विचारों का प्रतिवाद है और शेष पदों से प्रकट होगा कि प्रभु यीशु प्रथाओं का प्रति उत्तर है। दार्शनिक विचारों का प्रतिवाद मस्तिष्क के लिए है और प्रथाओं का प्रति उत्तर हृदय से संबंधित है। मसीही विश्वास सदा ही कुआं और खाई के बीच का संकट है। एक ओर ले तो विश्वास की अति दार्शनिक विचार बनने के संकट में है तो दूसरी ओर विश्वास प्रथाओं में बंध कर शिथिल हो जाता है। दोनों ही ओर संकट हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं को जीवन का जल कहा था, वह न तो बर्फ था और न ही भाप था, क्योंकि ये दोनों ही जीवन निर्वाह के योग्य नहीं है। यही कारण है कि हमें दार्शनिक विचारों और दूसरी और प्रथाओं से सावधान रहना है। मसीही विश्वास मसीह का व्यक्तित्व है। कुलुसियों की कलिसिया 5 संकटों से घिरी थी जिनका निवारण पौलुस इस अध्याय में करता है। तो आइए हम देखें ये 5 संकट क्या थे। पहला, लुभाने वाली बातें, पद 4-7 में। दूसरा है तत्व ज्ञान, पद 8-13। तीसरा, विधियों का लेख, पद 14-17। चौथा, भक्ति की रीति, 18-19 पद। पांचवा, योगाभ्यास, पद 20-23 पद। ये संकट आज भी कलीसिया पर मंडरा रहे हैं। मेरे विचार में यदि हम इस अध्याय पर ध्यान करते हुए अपने आत्मिक जीवन का लेखा तैयार करें तो हमें अपने जीवन का मार्ग दिखाई देगा कि हम किस दिशा में अग्रसर हैं। अनेक विश्वासी ऐसी एक या दो या एक से अधिक भूल के शिकार बन चुके हैं। प्रभु यीशु दार्शनिक विचार का प्रतिवाद और बौद्धिक पक्ष के रूप में करता है। तो आइए हम देखें कुलुसियों की पत्री 2:1 में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। लौदीकिया कुलुसे के निकट था। वहां पूर्व क्षेत्र के प्रवेश द्वार फ्रुगिया के पर्वतों में बसा कुलुसे नगर था। उसके खंडहर आज भी उपस्थित हैं। वह एक महान नगर था, परंतु लौदिकिया के बराबर नहीं था। लौदिकिया में प्रकाशित वाक्य में वर्णित 7 कलीसियाएं थी जिन्हें न गर्म न ठंडा कहा गया है। यहाँ परिश्रम का अर्थ है पीड़ा उठाना। मैकफेल ने इसे संताप की प्रार्थना कहा है। पौलुस ने देखा कि कुलुसे और लौदिकिया की कलीसिया संकट में थी, जिसके कारण पौलुस का हृदय दुखी था। वे इन दो में से किसी एक दिशा की ओर अग्रसर थे। आज की कलीसिया भी ऐसे ही संकट में है, और हमें कलीसिया के लिए मनोव्याथा अर्थात संताप के साथ प्रार्थना करना है, और बहुत अधिक प्रार्थना करना है। इससे समझ में आता है कि प्रकाशित वाक्य में उन कलीसियाओं के विश्वास को गुनगुना क्यों कहा गया है। प्रभु यीशु उनके ध्यान केंद्र से हट गया था। प्रभु यीशु ही मानवीय बुद्धि का और भावनाओं का प्रतिउत्तर है। जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा। कुलुसे नगर प्राचीन इफिसुस से लगभग 150 किलोमीटर भीतर भूभाग में स्थित था। पौलुस दो बार इफिसुस में गया था, परंतु वह कुलुसे और लौदिकिया में नहीं गया। अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में जब वह एशिया प्रवेश करना चाहता था, तब परमेश्वर की आत्मा ने उसे रोक दिया, अतः वह उत्तर की ओर चला गया। तीसरी प्रचार यात्रा में भी उसने उत्तर दिशा ली थी, क्योंकि संभवतः वह उस मार्ग से परिचित था। और यह तो स्पष्ट है कि वह इन नगरों में नहीं गया था, क्योंकि वह लिखता है जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उसके वहां से प्रस्थान करने के बाद विश्वासी कलीसिया में सहभागी हुए, अतः वे पौलुस से भेंट नहीं कर पाए थे। और यह भी संभव नहीं है, मेरा अपना विचार यह है कि पौलुस वहां कभी नहीं गया था। हम कुलुसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। ताकि उनके मनों में शांति हो। मन संपूर्ण आंतरिक मानव का प्रतीक है, मनुष्य का स्वभाव। पौलुस प्रार्थना करता है कि उनका संपूर्ण मनुष्यत्व शांति पाए, प्रेम से आपस में गठे रहें। प्रेम उन्हें एक दूसरे से बांधेगा। अंततः कलीसिया आत्मिक वरदानों और आत्मिकता से बंधी नहीं होती है, विश्वासियों को जोड़ने वाला कारण प्रेम है। तब हम देखते हैं पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ एक अति रोचक अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है विश्वासी आत्मिकता में विकास करें और परमेश्वर के निकटता में आ जाएं। परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। इसका अनुवाद यदि ऐसा हो, परमेश्वर के भेद को अर्थात पिता और मसीह को पहचाने, तो यह अधिक अर्थपूर्ण है। या परमेश्वर और प्रभु यीशु के भेद को पहचाने, ध्यान दीजिए, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को, इसका अर्थ क्या है? यह भेद कलीसिया है जो पुराने नियम में प्रकट नहीं था। परमेश्वर अन्य जातियों को बचाएगा, यह तो पुराने नियम में व्यक्त था, उसने उन्हें बचाया भी। परंतु पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर ने एक नया काम आरंभ किया। उसने जन समूहों को विश्वासियों की देह में जोड़ना आरंभ किया, अर्थात विश्वासियों की देह में पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा देना। 1 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस ठीक यही कह रहा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर था, तब उसके पास मानव शरीर था। आज उसकी देह आत्मिक है, परंतु यहां उपस्थित है। यह देह विश्वासियों की देह है। इन विश्वासियों ने उसमें विश्वास किया है। यह देह मसीह कहलाती है। यही कारण था कि प्रभु यीशु ने तर्शीश के शाऊल से कहा था, तू मुझे क्यों सताता है। वह प्रभु यीशु को सता रहा था क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु ही है, वह उसकी है। परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचाने। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 12 में पौलुस कहता है, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तब हम 12 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम सबका बपतिस्मा मसीह में हुआ है, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। यही कलीसिया में एकता लाता है। हमें कलीसिया की एकता की आज्ञा नहीं दी गई है किसी संस्था की सदस्यता लेकर यह सोचना कि वह कलीसियाई एकता लाए, यह संभव नहीं है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा तो एकता ला चुका है, वह सब विश्वासियों को एक देह में जोड़ता है और हमें आत्मा की एकता का आदेश देता है। हमारी समस्या है कि हम आत्मा की एकता नहीं बना रहे हैं। कुलुसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें जो एकमात्र आवश्यकता है वह है मसीह में। काश हम यह सीख पाएं, वह ज्ञान का भंडार है। मेरे बाइबल अध्ययन करते समय मेरे विभाग में एक नारा लिखा था जिसका मुझ पर अभी भी असीम प्रभाव पड़ा। वह था, ज्ञान का अगला चरण है जानना कि वह कहाँ प्राप्त होगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे सर्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी यह समझ में आ गया होगा। मैं अब जान गया हूँ कि वहाँ खोज करूँ, कहाँ खोज करूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ जो ज्ञानी है। मसीह हमारे लिए ज्ञान बना, हमें इस पर निर्भर करना है। बुद्धि और ज्ञान का भंडार वही है, और यह वास्तव में कैसी अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि अब पौलुस लुभाने वाली बातों की गलती बताएगा। कुलुसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। वह तत्व ज्ञान अर्थात दार्शनिक विचारों और लुभाने वाले शब्दों के विषय कहेगा। आज दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान ने बाइबल का स्थान ले लिया है और हमारे बाइबल अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इन बातों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये बुद्धिजीवी बाइबल के बारे में बहुत कम ज्ञान रखते हैं। उन्हें सब विद्वानों के विचार रटे हुए हैं, परंतु परमेश्वर के वचन का ज्ञान उन्हें नहीं के बराबर है। आज यह एक बड़ी समस्या है। कुलुस्से और लौदिकिया में भी यही एक महान संकट था। मेरे विचार में कुलुस्से की कलीसिया के पतन का कारण यही था, और इसी कारण लौदिकिया की कलीसिया एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं में सबसे दुर्बल कलीसिया थी। उनकी आत्मिक दशा बहुत बुरी थी, परंतु वे सोचते थे कि वे आत्मिकता में समृद्ध थे। ये नगर धनवानों के नगर थे। वे अपने धन और समृद्धि का घमंड करते थे, अपने ज्ञान पर घमंड करते थे, परंतु अपनी सच्ची आत्मिक दशा के प्रति वे अंधे थे। पौलुस कहता है, कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों में धोखा न दे। यहां धोखा देने का अर्थ है शिकार बनाना। लुभाने वाली बातों का अर्थ है कि मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें से दूसरों को फंसाना। मैं एक ऐसे ज्ञानी को जानता हूं जो बड़े बड़े शब्दों के प्रयोग द्वारा लोगों को दिखाना चाहता है कि वह एक महान विचारक है। एक बार वह जनसमूह से आधा घंटा चर्चा करता रहा, तभी एक व्यक्ति वहां आया और बाहर खड़े एक मनुष्य से पूछा, यह सज्जन क्या कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इन्होंने अभी कहना आरंभ नहीं किया है। यही तो समस्या है, वह कभी कुछ नहीं कहेगा, वह केवल लुभाने वाले शब्दों को उछालता है। मेरे प्रियो, मैं एक प्रिय महिला को भी जानता हूँ जो एक कलीसिया की सदस्य है। वह कहती है कि मैं वहाँ इसलिए जाना चाहती हूँ कि प्रचारक बड़ी मन भावन भाषा बोलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज का संकट भी यही है। अधिकांश विश्वासी बुद्धि का ऐसा दिखावा पसंद करते हैं। उन्हें प्रचारक के मुख से परमेश्वर के वचन की अपेक्षा बुद्धि की बातों का दिखावा अधिक अच्छा लगता है, जो उनको और भी लुभाने के काम करते हैं। पौलुस हमें सावधान करता है कि वे हमें लुभाने वाली बातों द्वारा शिकार ना बनाएं। उनके शब्द श्रोताओं को परमेश्वर के वचन की अपेक्षा अपना अनुयायी बनाते हैं। वे सांप की तरह बीन बजाने वाले के पीछे हो लेते हैं और उनको अपना अंत पता नहीं होता है। कुलुसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। इस समय पौलुस को इस कलीसिया का समाचार प्राप्त हो रहा था कि वे विश्वास में दृढ़ हैं। दृढ़ता देखकर, दृढ़ता का मूल यूनानी शब्द सेना में काम आता था, जब सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। विश्वासियों को भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है, परंतु आज अधिकांश एक दूसरे की जड़ खोदते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं। काश हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और एक दूसरे को आदर दे पाएं। दृढ़ता अर्थात ठोस आधार, अटल रहना, दूसरे शब्दों में जो हिल ना पाए। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को यही लिखता है, 1 कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय उसके 58 पद में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कुलुसी की कलीसिया अपने विश्वास की दृढ़ता के लिए जानी जाती थी और पौलुस चाहता था कि वे ऐसे ही बने रहें और लुभाने वाली बातों के भ्रम जाल में न फंसें। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय के 6 पद में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उद्धार पाना, विश्वासी होना, इनका अर्थ क्या है? मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि मुझे उद्धार प्राप्त नहीं है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सिद्ध नहीं हूं, क्योंकि मैं 10 आज्ञाओं का पालन करने में सिद्ध नहीं हूं। उसमें लिखा था कि जब तक मैं 10 आज्ञाओं के पालन में सिद्ध नहीं हो जाता, मेरा उद्धार संभव नहीं है। मेरे मित्रों, उद्धार का अर्थ है प्रभु यीशु को अपनाना। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसे ग्रहण करके उसी में चलते रहो अर्थात आत्मा में चलो। मसीही चाल चलन गुब्बारे की नाई उड़ता नहीं है। बहुत विश्वासियों का सोचना है कि मसीही जीवन भावनाओं का जीवन है और आप अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट के समान उड़ने लगते हैं। जी नहीं, मसीही जीवन ऐसा नहीं है। मसीही जीवन आपके घर में, कार्यालय में, कक्षा में, सड़क में जीने वाला जीवन है। आपको इस संसार में ही रहना है और मसीही का सा जीवन जीना है, उसके स्वभाव को प्रदर्शित करना है। परमेश्वर करे कि हम अपने दैनिक जीवन में मसीह के साथ जुड़े रहें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा लोग मसीह को देखने पाएं। कुलुसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जड़ पकड़ते, पेड़ के समान जड़ पकड़े। पेड़ एक जीवित वस्तु है, हमें बढ़ते जाना है। पौलुस इफिसियों को लिखता है कि प्रभु यीशु नींव है, हमें उस पर बढ़ते जाना है। मसीह यीशु को अपनाने के बाद हमें उसमें बढ़ते जाना है, ना कि चुपचाप बैठे रहना है। तो हम क्या करते हैं? और क्या करते हुए बढ़ना है, मसीह में जड़ पकड़ते हुए, उससे पोषण ग्रहण करते हुए उसमें बढ़ते जाना है। आपको विश्वास में दृढ़ होना है, उसके वचनों को पढ़ना है और उसका पालन करना है। यही कारण है कि वह कहता है विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अर्थात विश्वास के द्वारा दृढ़ता प्राप्त करते जाओ। विश्वास वह आधार है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु को थामते हैं। आइए अब हम दूसरी बात को देखते हैं। अब आता है तत्व ज्ञान का संकट। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। चौकस रहो अर्थात सावधान, ठहरो, देखो और सुनो। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। यदि आप दर्शन शास्त्र का इतिहास देखें तो प्लेटो, कलिसियाई पितर और आज केंट वुल्टमान, आज के आदर्श थियोलॉजी ज्ञाता या धर्म विज्ञान के ज्ञाता हैं, तो किसी भी ज्ञानी में परमेश्वर के वचन की प्रेरणा का उच्च विचार नहीं है। वे जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते हैं, परंतु दर्शन शास्त्र में समाधान नहीं है। एक सच्चा दर्शन शास्त्री सत्य का खोजी होता है, परंतु सत्य मानवीय बुद्धि में प्रकट नहीं होता है। मसीह यीशु ही इसका उत्तर है। पौलुस ने कुरिन्थ की कलिसिया को लिखा, 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 30 पद में, परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। दर्शन शास्त्र का भ्रम ऐसा है जैसे एक अंधा व्यक्ति अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को खोज रहा है जो वहां नहीं है। उसकी सत्य की खोज निराशा की खोज है। पौलुस चेतावनी देता है सावधान। मनुष्यों की परंपराओं, आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने अपने समय के धर्म गुरुओं को परंपरा पालन के कारण झिड़का था, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से बढ़कर परंपरा का पालन करते थे। स्पष्ट कहूं तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने का मेरा उद्देश्य यही है, परमेश्वर के वचन से कुछ खोज लेना और फिर उस पर काट के घोड़े की सवारी करना बहुत आसान है। मैं दर्शन शास्त्र के विरोध में नहीं हूं, परंतु परमेश्वर के वचन में उससे कहीं अधिक ज्ञान है। कुछ प्रचारक मसीही जीवन पर बल देते हैं, निसंदेह बाइबल इसे अनिवार्य कहती है, परंतु मात्र यही नहीं, इससे भी अधिक कुछ है। यही कारण है कि संपूर्ण वचन का अध्ययन हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। यूनानी मूल शब्द जिसका अनुवाद आदि शिक्षा किया गया है उसका अर्थ है आधारभूत, अर्थात क ख ग। कुछ लोग अपना मसीही जीवन सांसारिक रीतियों पर आधारित करते हैं जो बहुत आसान है, परंतु हमारा आधार मसीह यीशु है। अब पौलुस मसीह यीशु के बारे में चर्चा करेगा जिसे हम अपने अगले अध्ययन में देखेंगे। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं प्रभु की। हम सब आते हैं।